व्यवस्था विवरण अध्याय 30। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा इन बातों को स्मरण करे। व्यवस्था विवरण 30 पहला पद। दूसरे शब्दों में जब तुम देश से निर्वसित किए जाओ और अन्य जातियों के दासत्व में रहो तो याद करना कि यहोवा ने क्या कहा था और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर के उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंदवाई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वो तुमको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। व्यवस्था विवरण 30:2-4 पद। मत्ती 24:31 में ये भविष्यवाणी यीशु द्वारा दी गई है कि जब वो महिमा में आएगा तब उसके स्वर्गदूत चारों दिशा से उसके चयनित जनों को एकत्र करके उनके देश में ले आएगा। ये चयनित जन कलीसिया नहीं है जैसे कि कुछ लोग सिखाते हैं। कलीसिया महाक्लेश के समय में नहीं रहेगी। ये यहूदी लोग हैं जो भविष्यवाणी की पूर्ति के निमित्त फिर से अपने देश में एकत्रित किए जाएंगे। मत्ती 24:31 में यीशु इस प्रतिज्ञा को स्पष्ट करता है। नया नियम के सेवक इस विषय में भ्रमित होते हैं कि वे इसराइल और उसके भविष्य तथा कलीसिया में अंतर नहीं कर पाते हैं। उनके पास पुराने नियम का संदर्भ नहीं होता है कि वे इस भविष्यवाणी को देखें कि वो व्यवस्था विवरण में विहित है। यीशु के अधिकांश संदर्भ इसी पुस्तक से है। यहां आकर आपको मत्ती अध्याय 24 में चुने हुओं का अर्थ समझ में आता है। ये लोग कलीसिया के विश्वासीगण नहीं है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करें जिससे तू जीवित रहे। व्यवस्था विवरण 30:6 पद। उस समय परमेश्वर मनुष्य के मन के साथ व्यवहार करेगा और उसकी शारीरिक अभिलाषाओं से उसे मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपना परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। व्यवस्था विवरण 30:9-10 पद। मूसा उन्हें बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पद 11 में भी वो यही कहता है, देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वो ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। व्यवस्था विवरण 30:11-14 पद। परमेश्वर ने अपना वचन सुबोध शब्दों में दिया है तथा उसने उसे आपके मन में और मुंह में रख छोड़ा है। जब भी कोई व्यक्ति ये कहे, मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना था, वो ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने उसके मन में अपना वचन स्थापित किया हुआ है। क्योंकि मुझे ये कैसे मालूम हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना था? ये मेरे मन की अवज्ञा थी, क्योंकि मेरे मन में परमेश्वर की आज्ञाएं पहले से ही वास कर रही थी। वे ही मेरी अगुवाई करती है कि मैं जान लूं कि कब अच्छा करता हूं और कब बुरा करता हूं। आप अपने मुंह से केवल गवाही देते हैं कि आज्ञाएं आपके मन में बसी हुई है और आप जानते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं जानता हूं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करना है। मैं जानता हूं कि मुझे अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित करना है। मैं जानता हूं कि मुझे अपनी परिस्थितियां परमेश्वर को समर्पित करना है। तो फिर जब आप ये जानते हैं तो करते क्यों नहीं? परमेश्वर तो किसी से छिपा नहीं है कि आपको अपनी आत्मा देह से बाहर ले जाकर आकाश मंडल में परमेश्वर की खोज करना पड़े कि वहां परमेश्वर से भेंट करके उसकी गरजती हुई आवाज सुनकर उसकी इच्छा और वचन को जाने। ना ही वो समुद्र पार किसी देश में आश्रम बनाकर बैठा है, ना ही वो किसी पर्वत पर कुटिया डालकर बैठा हुआ ज्योति प्रसारण कर रहा है। परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञाएं आपके बहुत निकट है, वे आपके मन में बसी हुई है। उसने उन्हें वहां लिख दिया है कि आप जान ले कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम, जिसकी आप अपने मुंह से गवाही देते हैं। मैं कहता हूं मुझे ऐसा नहीं करना था, या कहता हूं मैं जानता हूं मुझे ये करना है। लिखा है कि वो जो भलाई करना जानता है और करता नहीं वो पाप करता है। जो मुझे करना है और उसे करने में मैं विफल होता हूं तो वो पाप है। मैं अपने मन में जानता हूं कि मुझे क्या करना है, ये मेरे मन में बसा हुआ है, पाप है। पौलुस इसी पद को रोमियो 10 में कहता है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, रोमियो 10:6-8 पद। पौलुस ये भी कहता है, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, रोमियो 10:9 पद। पौलुस के कहने का अर्थ यह है कि उद्धार आपके कितना निकट है। उद्धार इतना निकट है जैसे आपका मुंह और हृदय। उद्धार पाने के लिए आपको स्वर्ग में नहीं चढ़ना है, आपको 7 समुद्र पार जाकर 7 मुंह वाले अजगर को मारकर 7 सोने के सेब नहीं चुराने हैं कि आपका उद्धार हो। उद्धार का मार्ग दुर्गम नहीं है कि आपको घोर परिश्रम करना हो, ये तो इतना निकट है कि आपको उसके ना पाने की क्षमा नहीं मिलेगी। यदि आप मुंह से कहें कि यीशु ही मसीह है और मन में विश्वास रखें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो आपका उद्धार हो जाएगा। मुंह धार्मिकता की गवाही देता है और मन उद्धार के निमित्त विश्वास लाता है। देखिए आप परमेश्वर के कितने निकट हैं। ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से कोसों दूर हूं। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर है। नहीं, आप तो उद्धार के बहुत पास हैं, परंतु आप मेरे जीवन के बारे में नहीं जानते। मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं केवल यही जानता हूं कि यदि आप कहें यीशु प्रभु है, तो आप इसी समय उद्धार पा सकते हैं। यदि आप ये भी कहें, ओह प्रभु, यदि तू मेरे जीवन को ले ले, मैं समर्पण करता हूं, इसे अभी ले ले, तो वो आपको तुरंत स्वीकार करेगा। यीशु में विश्वास रखता हूं कि तू मुर्दों में से जी उठा, तो आपका उद्धार हो गया। देखिए, आप उद्धार के कितना निकट है। परंतु ध्यान दीजिए कि विश्वास आपके चयन का विषय है। आप चाहे तो आज विश्वास ला सकते हैं, और ना चाहे तो आपकी इच्छा। आप जब ये विश्वास रखेंगे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो आप पुष्टि करेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो पृथ्वी पर आया कि मनुष्य के पापों को उठा ले, जिससे हमें जो उसमें विश्वास रखते हैं अनंत जीवन प्राप्त हो। हम में यीशु के पुनर्थान के द्वारा अनंत जीवन की आशा जीवंत बन जाती है। उसने पुनर्थान के द्वारा हमारी आशा को थामा है। आप चाहे तो ये भी मान सकते हैं कि उसका पुनर्थान नहीं हुआ था। उसके शिष्यों ने सैनिकों को नशे की गोलियां खिलाकर यीशु की लोथ को चुरा लिया था, और उसे कहीं गुप्त स्थान में दफनाकर अफवाह उड़ा दी कि वो तो कब्र में नहीं था, केवल उसका कफन वहां था। और उन्होंने मरने तक सच न उगलने की कसम खाई थी। वे सच को लेकर कब्र में चले गए। यूहन्ना भले ही लंबी उम्र तक जिया, परंतु अन्य सब चेले इस झूठ के कारण बुरी मौत मारे गए। शैतान के पास मनुष्य का दर्शन शास्त्र है, नौकरी का तर्क है। परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आयुब 1:8। इस पर शैतान ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि वो व्यर्थ में क्यों कर उसकी सेवा करेगा। वो तो भाड़े का टट्टू है। जिस प्रकार तूने उसे आशीष दी है, कोई मूर्ख ही तेरी सेवा नहीं करेगा। आयुब तो भाड़े का टट्टू है। वो अपने लाभ के बदले में तेरी सेवा करता है। उसकी आशीषों को छीन ले और देख, वो तुझे कोसेगा। परंतु सब कुछ लुट जाने और नाश हो जाने के बाद भी आयुब ने मुंह के बल गिरकर कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। आयुब 1:21। ना तो उसने परमेश्वर को कोसा, ना ही उस पर दोष लगाया। परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं रखता है, वो मेरी चिंता नहीं करता है। शैतान का तर्क वितर्क हो गया। शैतान जब फिर परमेश्वर के पास आया, तब परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? मैं पृथ्वी पर घूमता हुआ आता हूं। परमेश्वर ने बड़े घमंड से कहा, तूने मेरे दास आयुब को देखा है? कैसा भला मनुष्य जो बुराई से घृणा करता है। शैतान ने अपना दूसरा तर्क दिया, जो मनुष्य की सबसे अच्छी व्याख्या है। शैतान ने मनुष्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया है, अतः उसने कहा, उसकी देह को कष्ट दे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपके सबसे बलशाली स्वभाव है देह की रक्षा। आप अपनी देह के लिए सब कुछ लुटा सकते हैं। अब आप यहां एक समस्या देखते हैं। चेले यीशु को चुराने के सच को छिपा रहे थे। इस तथ्य के प्रकाश में कोई कैसे मान ले कि वे अपने झूठ के लिए जान देते हैं। यहां तक आपको स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने इस वैज्ञानिक तथ्य पर कैसे विजय पाई कि अपने देह की रक्षा के लिए मनुष्य सब कुछ लुटा देता है। यहां यह भी समझाना पड़ेगा कि एक झूठ के लिए चेले मृत्यु झेलने के लिए क्यों तैयार थे। अतः आप स्वयं ही चुन ले कि पुनरुत्थान की कहानी सच्ची है या झूठी है। विश्वास करना आसान है क्योंकि उसके गवाह है, परंतु विश्वास नहीं करने में अनेक समस्याएं हैं। गवाहों ने सदा यही कहा है, हम इसके गवाह हैं कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अतः आप गवाहों की वाणी पर विश्वास करते हैं। यदि हम गवाहों पर विश्वास नहीं करते तो हम वास्तव में हमारे संविधान के विरुद्ध हैं, क्योंकि हमारे संविधान की कानूनी धाराओं में गवाही की वैधानिक मान्यता है। गवाहों के बयान से ही सत्य स्थापित किया जाता है। मसीह के विषय में भी आपके पास गवाह है जो पुनरुत्थान की घटना की एक साथ गवाही देते हैं। यदि आप गवाहों पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको एक नई न्यायपालिका स्थापित करनी होगी। अतः आपका मानना या ना मानना अपनी अपनी पसंद है। मान लेने में आपका लाभ ही है। विश्वास नहीं लाकर आप मूर्ख क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान के अनेक प्रमाण हैं। ये मनुष्य के कठोर मन और मूर्खता का प्रदर्शन है कि वो परमेश्वर को मानना नहीं चाहता है। मनुष्य नास्तिक इसलिए नहीं है कि परमेश्वर खोजा नहीं जाता, परंतु इसलिए कि मनुष्य परमेश्वर को अनुभव करना नहीं चाहता है, जबकि परमेश्वर उससे निकटता की दूरी पर है। दूसरे शब्दों में उद्धार बहुत पास है। आपको जो करना है वो ये है कि अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जी उठाया है। आपको उद्धार प्राप्त हो जाएगा। पौलुस इस पद को लेकर हमें समझाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक और काम किया है, क्योंकि पद 16 में मूसा जिस आज्ञा का उल्लेख करता है वो है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। व्यवस्था विवरण 30:16 पद। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूं, परंतु मेरी देह दुर्बल है, इसलिए मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है। इसलिए पौलुस परामर्श देता है, यदि तू मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास रखे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो ये मेरी विफलताओं का उपचार है। इस प्रकार मुझे आज्ञाओं के उल्लंघन की क्षमा प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा मुझे पापों से शोधन और स्वच्छता प्राप्त होती है और मेरा उद्धार होता है। मेरे पास अब परमेश्वर का अनंत जीवन होता है जो मसीह यीशु में होकर मुझे प्राप्त होता है। अतः मूसा ने कहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। व्यवस्था विवरण 30:19 पद। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप परमेश्वर को, उसकी सेवा को और उसके अनुसरण को चुने या इनमें से कुछ भी ना चुने। मूसा उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि वे मृत्यु और श्राप की अपेक्षा आशीषों को और जीवन को चुने। ये आपका अपना निर्णय है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर जानता है कि आप क्या चुनेंगे, परंतु वो आपको अपनी इच्छा से चुनने का अधिकार देता है। अतः उत्तम है कि आप जीवन और आशीषों को चुनें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है कि ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। व्यवस्था विवरण 30:20 पद।